हरे कृष्ण। तो इस भजन के साथ शुरू करते हैं आज के कक्षा।
गोपीनाथ घुचाओ संसार ज्वाला, गोपीनाथ घुचाओ संसार ज्वाला, अविद्या जातना आर नाही सहे, अविद्या जातना जन्म मरण ज्वाला, जन्म मरण ज्वाला, गोपीनाथ आमी तो तो कामेर दास, गोपीनाथ आमी तो कामेर दास, विषय वासना जागिछे हृदये, विषय वासना फाड़ीछे करम फास, फाड़ीछे करम फास, गोपीनाथ कबे बा जागिबो आमी, कामरूप अरी दूरे त्यागिबो, कामरूप अरी हृदय स्फुरीबे तुमि, गोपीनाथ आमि तो तुमार जन, तुमारे छाड़िया संसार मजिनु, तुमारे छाड़िया भूलिया आपन धन, आ गोपीना आमी तो तुमार जन, गोपीनाथ तुमी तो सकली जानो, आपनार जने दंडिया एखन, आपनार जने श्रीचरणे देह स्थान, गोपीनाथ তুমি তো সকলি জানো, গোপীনাথ এই কি বিচার তব, বিমুখ দেখিয়া চরণি যোজনে, বিমুখ না কর করুণা লব, গোপীনাথ এই কি বিচার তব, গোপীনাথ আমি তো মূরখ অতি, কিসে ভালো হয় কভু না বুঝিনু, কিসে ভালো হয় তাই হে ন মম গতি, গোপীনাথ আমি তো মূরখ অতি, গোপীনাথ তুমি তো পণ্ডিত বর, মুঢ়ের মঙ্গল তুমি অন্বেষিবে, মুঢ়ের মঙ্গল এ দাসে না ভাব পর, গোপীনাথ ঘুচাও সংসার জ্বালা, অবিদ্যা জাত না আর নাহি সহে, অবিদ্যা জাত না জনম মরণ মালা, জনম এ গোপীনাথ আমি তো কামের দাস, বিষয় বাসনা জাগিছে হৃদয়ে, বিষয় বাসনা পড়িছে করম ফাঁস, গোপীনাথ কবে বা জাগিব আমি, কামরূপ অরি দূরে তিয়াগিব, কামরূপ অরি কামরূপ অরি দূরে তিয়াগিব, হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি, গোপীনাথ আমি তো তোমার জন, তোমারে ছাড়িয়া সংসারে মজিনু, তোমারে ছাড়িয়া ভুলিয়া আপন ধন, গোপীনা তুমি তো সকলি জান, আপনার জনে দণ্ডিয়া এখন, আপনার জনে শ্রীচরণে দেহ স্থান, গোপীনাথ এই কি বিচার তব, বিমুখ দেখিয়া চারণি যজনে, বিমুখ না কর করুণা লব, গোপীনাথ আমি তো মূরখ অতি, কিসে ভালো হয় কভু না বুঝিনু, কিসে ভালো হয় নাই হে ন মম গতি, গোপীনা তুমি তো পণ্ডিত বর, মুঢ়ের মঙ্গল তুমি অন্বেষিবে, মুঢ়ের মঙ্গল এ দাসে না ভাব পর, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, জয় কৃষ্ণ বলরাম কৃষ্ণ বলরাম, জয় কৃষ্ণ বলরাম, জয় রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, জয় রাধে শ্যাম,
निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की समस्त आचार्य वृंद की समवेत भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की निताय गौर हरिपेमानंदे। और थोड़ा आगे आ सकते हैं आप लोग, स्पेस है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के त्रयोदश अध्याय के श्लोक संख्या 12, 13 और 14 इसको पाठ करेंगे। 12-13 का हम श्लोक आवृत्ति कर लेते हैं, 14 को फिर विधिवत पढ़ेंगे क्योंकि इसमें तात्पर्य है थोड़ा। श्लोक संख्या 12 जी 11 मुझे यही दिया गया, मैं तो था नहीं क्लास में, कल मैं अंग्रेजी क्लास में था। अच्छा तो 11 ठीक है, 11 से लेकर 14 तक, 11 में छोटा सा पढ़ते हैं। ओके श्लोक संख्या 11 अत्राप्युदाहरन्तीं मम इतिहासं पुरातनं प्रह्लादस्य च संवादं मुनेराजगरस्य च। उसके अनुवाद है, इसके ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में विद्वान मुनिजन एक प्राचीन वार्तालाप की कथा सुनाते हैं जो भक्त प्रह्लाद महाराज तथा अजगर वृत्ति धारण किए एक महामुनि के मध्य हुआ था। भक्त प्रह्लाद महाराज की भेंट जिस मुनि से हुई थी उसने अजगर वृत्ति धारण कर रखी थी। अजगर वर्षों तक एक ही स्थान पर रहा करता है और कभी नहीं जाता है, और जो कुछ स्वतः मिल जाता है वही खाता है। भक्त प्रह्लाद महाराज अपने साथियों सहित इस महामुनि से मिले और उनसे इस प्रकार बोले। तं सायानं धरोपस्थे कावेर्यां सह्यसानुने रजस्वलेस्तनुर्देशेर निगुढामलतेजसम् ददर्श लोकन्विचरन् लोकोत्तत्त्वविवित्सया ब्रूतोमात्ये कतिपयेः प्रह्लादो भगवत्प्रियः। इसका अनुवाद है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सर्वाधिक प्रिय सेवक भक्त प्रह्लाद महाराज एक बार अपने कुछ विश्वासी पार्षदों के साथ संत पुरुषों की प्रकृति का अध्ययन करने हेतु ब्रह्मांड के भ्रमण पर निकले। वे कावेरी तट पर पहुँचे, जहाँ सह्य नामक एक पर्वत श्रृंखला है। वहाँ पर उन्हें एक महान साधु पुरुष मिला, जो भूमि पर लेटा हुआ था और धूल धूसरित था, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह अत्यंत उन्नत था। श्लोक 14। कर्मणा कृतिभिर्वाचा लिंगैर्वर्णाश्रमादिभिः न विदन्ति जनायं वै सो साविति नाविति च। कर्मणा कृतिभिर्वाचा लिंगैर्वर्णाश्रमादिभिः न विदन्ति जनायं वै सो साविति न वेति च। एक एक कोई आवृत्ति कर सकते हैं, बस। कृतिभिर्वाचा लिंगे वर्णाश्रमादिभिः न विन्दन्ति जनायं वै सो साविति न वेति च। वन फ्रॉम लेडी साइड। शब्दार्थ कर्मणा कर्म से, आकृति भी ही शारीरिक बनावट से, वाचा शब्दों से, लिंगेर लक्षणों से, वर्ण आश्रम के चार भौतिक और चार आध्यात्मिक विभावों से संबंधित, आदि भी ही अन्य लक्षणों से, न विदन्ति नहीं समझ सकते हैं, जनाहा सामान्य लोग, यम जिसको, वै निसंदेह सह कि वह, असो वही व्यक्ति था, इति इस प्रकार, न नहीं, वा अथवा, इति इस प्रकार, च भी। अनुवाद। वहाँ के लोग न तो उस साधु पुरुष के कर्मों से, न शारीरिक लक्षणों से, न उसके शब्दों से, न उसके वर्णाश्रम धर्म के लक्षणों से यह समझ पाए कि ये साधु पुरुष है जिसे वे जानते थे, वही व्यक्ति है जिसको वे जानते थे। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, सह्य पर्वत की घाटी में कावेरी नदी के तट पर रहने वाले उस स्थान के निवासी यह नहीं समझ पाए कि वह पुरुष वही साधु पुरुष वही है जिसे वे जानते थे। इसलिए कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ नाबुझय। उच्च कोटि का वैष्णव इस प्रकार रहता है कि कोई यह न समझ सके कि वह क्या है और क्या था। वैष्णव के भूतकाल को भी समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भक्त प्रहलाद महाराज ने इस संत पुरुष के विगत जीवन के विषय में पूछताछ किए बिना तुरंत ही उसे सादर नमस्कार किया। ओम अज्ञानं तमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो सातवां स्कंद के ये त्रयोदश अध्याय में ये वर्णन नारद जी ने बताते हैं, जिसमें इसके विषय की टॉपिक पूर्ण पुरुषों का आचरण, पूर्ण मतलब कंप्लीट, जो पुरुष हो चुका है कंप्लीट, पूर्ण हो चुका है, कोई बाकी कुछ नहीं रहा, उनका आचरण कैसा है ना। नहीं मतलब इसका है, जिनका आचरण ऐसा नहीं है वो पूर्ण नहीं है, कुछ बाकी है उनका। जो पूर्ण हो चुके हैं उनके एक्टिविटीज क्या है ये सिखाते हैं। मुख्यतः नारद जी ने इस विषय पर बोलना जब शुरू किए, संन्यास आश्रम के बाद चर्चा शुरू किए, क्योंकि संन्यास आश्रम ये मनुष्य जीवन का लास्ट फेज है ना। नहीं तो हो जाने से कंप्लीट होगा चतुराश्रम, है ना। नहीं चार ही तो है, जो पूरा कोर्स कंप्लीट करेगा पूर्ण हो जाएगा तो मैंने संन्यास कर लेगा तो कंप्लीट हुआ ना, नहीं तो बाकी कुछ रह जाएगा। जो चौथा ग्रेड में गया और कंप्लीट किया उसको तो ही बात कहते हैं। अभी तक आप चर्चा सुनकर आए होंगे किस प्रकार संन्यास आश्रम का आदर्श वर्णन नारद जी ने किए होना चाहिए, लेकिन वो भी आपको पता होगा जरूर, कोई बोले होंगे कि कलो संन्यास विवर्जित, है ना। नहीं इस कलयुग में ये जो संन्यास के वर्णन नाम पढ़ते हैं वर्णाश्रम वो संभव नहीं है, इसलिए मना है, ब्यान अडर है उसके ऊपर। तो बोलेंगे हाँ फिर संन्यास क्यों लेते भाई, जो ब्यान अडर लगा है ना, ई संन्यास कर्म संन्यास मना है। यहाँ कर्म तंगेंगे सिखा सूत्र त्याग करके, कर्म त्याग करके महात्मा बन जाए, बोले ये नहीं, ये कलयुग में वर्जित है, इस तरह हमारा कैपेसिटी नहीं है। तो फिर संन्यास ये भक्ति संन्यास है, प्रचार के लिए संन्यास मतलब सम्यक न्यास, त्याग कर देना है। लेकिन हम छोटे से को त्याग करके बड़े को पकड़ते हैं, छोटे फैमिली के त्याग किए रे बहुत बड़ा परिवार को स्वीकार किए। पहले तो अपने फैमिली मेंबर को चलाते थे, हाँ 10-20 किलोमीटर रेंज में रुकते थे, घर में आते थे, डेली खाते पीते बैठते चलते वहीं से थे। अब जब छोड़ा उसको, इतने बड़े फैमिली को स्वीकार किया कि घर में रह नहीं सकता, कहीं टिक नहीं सकता, घूमते फिर पूरे वसुधैव कुटुम्बकम, संसार को अपनाया, इसलिए इसको छोड़ा। तो ये पर प्रीचिंग पर्पस, इसके लिए संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए हमारे संस्था में, हमारे परंपरा में बड़े बड़े आचार्य वृंद, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी कलयुग में थे, उन्होंने स्वयं करके देखा है। लेकिन वो जिस परंपरा से, जिस संप्रदाय से संन्यास लिए, उनका कुछ फॉलो नहीं किए, उनका फॉलो नहीं किए, उनका तो हॉरिजॉन्टल था, वो वर्टिकल लगाए, और उनका तो और था वो, क्योंकि ये चेंज करके वही दिखा दिए भगवान ने स्वयं, बोले इस युग में संन्यास मना है लेकिन ये त्याग ले सकते हैं। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं संन्यास उसको नहीं कहते हैं जो कर्म त्याग करो, बोले नहीं, निराग्नि नचक अक्रियः, ना अग्नि को ना कर्म को त्याग नहीं करो, करते रहना चाहिए लेकिन आपने लिए नहीं, भगवान के लिए और भगवान के जनों के लिए। संसार में दो शब्द आप सुने होंगे, एक होता है स्वार्थ, ये तो बहुत प्रचलित होते स्वार्थ, दूसरा है परमार्थ, है ना। नहीं दोनों में अर्थ ही लगता है, अर्थ में एक की प्रीपोजिशन लगा स्व स्वार्थ और दूसरे में परम लगा दिया परम अर्थ, ये स्व अर्थ ये परम अर्थ, दोनों ही अर्थ ही है, अर्थ समझते ना हम, तो अर्थ मतलब वही समझते हैं, हाँ यही भी अर्थ है, जिसको हम चाहते हैं कुछ हमारे कुछ काम बने वही अर्थ है और क्या है, उसको अपनाना चाहते हैं अर्थ को। एक होता है स्व अर्थ जिसको स्वार्थ कहते हैं, और एक होता है ऐसे अर्थ जो बिल्कुल कंप्लीट कर, परम अर्थ है, उससे परे फिर कोई अर्थ नहीं हो सकता, है ना। नहीं हम तो परम अर्थ समझते हैं 2000 रुपीज नोट, उसके प्रति कोई नोट है ही नहीं, है ना। नहीं हाँ 10, 20, 50, 100, 500 यही है ना, उसके 2000 आगे तो कुछ ही नहीं, बड़ा नोट वही है, परम अर्थ वही है। लेकिन ये परम अर्थ नहीं है, गर्म अर्थ है। चरम अर्थों ने, अर्थ मतलब जो जिसके द्वारा हम अपने जीवन की कामना को पूर्ति कर सकते हैं और उसको व्यवहार करके हम जो कुछ आशा करते हैं उसको पूरा सकते, तो इसीलिए उसको बटोरना चाहते हैं अर्थों को। जिसके द्वारा हमारा पूर्ति हम नहीं कर सकते हैं इंद्रिय तृप्ति, तो उसको अर्थ बोल के नहीं मानेंगे, इसमें क्या काम है। 5 साल पहले लाल वाला नोट वो अर्थ था, परम अर्थ, हाँ खूब बटोरते थे, अभी वो अनर्थ हो गया, अभी अर्थ हो गया पर्पल वाला, उसको बटोरने लगे। तो जिस चीज से हमारा काम बने वही आपका अर्थ है। लेकिन स्वार्थ और परमार्थ के संसारी लोग ये समझते हैं, स्वार्थ मतलब हमारे शरीर संबंधी है, क्योंकि संसार के प्रत्येक प्राणी शरीर स्तर पर है, शरीर स्तर पर है, भले कुछ कहे ले दे करके आधार कार्ड टांग कर घूमते हैं, वो आधार है क्या, शरीर ही तो है, इसी को बनाता है ऑफिशियली, शरीर स्तर पर है। तो शारीरिक आवश्यकता को जो पूर्त करते हैं, जो आराम देते हैं, उन्हीं को हम स्वार्थ मानते हैं। अपने शरीर को जो सुख देता है उसको क्या कहते हैं, स्वार्थ। और दूसरे के शरीर को सुख दे उसको बोलते परार्थ, परमार्थ नहीं, परार्थ। वो तो बहुत ही कम लोग करते हैं, उनके भलाई के लिए मैं करूं, भाड़ में जाए, मैं मेरा ले लूं, वो मरे गरे को आ जाए, तो परार्थ के लिए तो कोई चेष्टा करते नहीं, सब स्वार्थ के लिए, मुझे कुछ मिल जाए, मैं इसी के लिए लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी, ओनली फॉर स्वार्थ। अगर स्वार्थ ना होता उसका आवश्यकता ही क्या होता, ये जो नाप चुप जमीन का कोर्ट कचहरी, इसका जरूरत क्या है जो स्वार्थ ना होता। नहीं, 2 इंच 2 फीट में मेरा था, इसे किसे आ गया स्वार्थ। अरे तेरा था नहीं, तेरा बाप का नहीं, दादा का नहीं था, वो रहेगा, तुम जो से आया जब तक वो रहेगा, ना तुम्हारा था ना होगा ना हो सकता है, लेकिन मर जाएंगे मर पीट करके, स्वार्थ। क्योंकि इनके द्वारा हम कुछ कहेंगे हमारा है, हमें कुछ इसीलिए। लेकिन वही लोग जब फिर बाद में करते हैं, अरे स्वार्थ करते करते गया, स्वार्थ पूर्ति धके, लेकिन परमार्थ के अभी लगे हैं। परमार्थ क्या है ना, वो तो शरीर के लिए था जो अर्थ, एक होता है जो शरीर भी जाएगा तो जाने वाला ही है, उसके बाद में क्या है, उसके लिए कुछ व्यवस्था करो, यह लोक परलोक, तो उसके लिए कुछ तैयारी करो जुगाड़, उसके लिए परमार्थ। मतलब वहीं तक संसारी लोगों को इतने तक उनका योजना है कि स्वर्ग तक जाएंगे, मर गए तो स्वर्ग तक जाएंगे, स्वर्ग के अभी बुकिंग कर लेना चाहिए, इसीलिए यज्ञ भज्ञ करते हैं, वहां भी एक फ्लैट ले लूं। अगर हम लोग जो यहाँ लेते हैं उनको अगर पता चल जाए ना, बुकिंग एजेंट को डीलर पता चल जाए, स्वर्ग के अपार्टमेंट को अभी बुकिंग कर लिए होते हैं, हाँ परमार्थ। लेकिन ये कॉन्टैक्ट नंबर मिला नहीं उनको, यहाँ कोई डीलर है नहीं प्रॉपर्टी डीलर, तो ये परमार्थ मानते हैं स्वर्ग में अपना बाद जगह बनाने के लिए। उसके ऊपर तो कुछ जानते ही नहीं, उसके ऊपर कुछ होता है दे डोंट नो, बस यह लोक परलोक और स्वर्गलोक, बस इसी के अंदर उनका, जो बहुत लोग थोड़ा चिंताशील है मननशील है, और जो वो नहीं है वो तो इसी को ही सब कुछ मानते हैं। वो क्या मानते हैं, मरने के बाद क्या जानते हैं, भस्मी उतस्य देहस्य पुनराग बना, फिर क्या है, खत्म, वो तो यहां तक ही मानते हैं। कुछ लोग तो मानते हैं मर जाने के बाद भी वो शरीर को जलाते नहीं गाड़ते नहीं, बोले ना वो रहेगा डेड बॉडी, उसको अलंकार पहनाते हैं, वो कब्र के ऊपर क्या क्या सजाते हैं, बोलते नहीं वही है वो तो यहीं तक मानते पर निकलेगा वही है। तो जो भी हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से स्वार्थ परमार्थ एक ही चीज है, अर्थ तो एक ही है, हम जानते नहीं स्व क्या है। इसी अध्याय में यही हीरो जो इस भागवत के सप्तम स्कंद के हीरो जो प्रहलाद महाराज, उन्हीं के उक्ति से, नते विदु स्वार्थ गतिं ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिन, जो लोग बाहरी चीजों को अर्थ मानते हैं उनको पता नहीं कि असली स्वार्थ क्या है, दे डोंट नो, बाहरी चीज को बटोरने में लगते हैं। अरे बाहरी चीज तो हमेशा बाहर का ही है, वो तेरा है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, वो तो बाहर का ही है। बहिरर्थ मानिना, बाहरी चीज को अर्थ मानते हैं और इसी को स्वार्थ के रूप में सुख, हाँ थोड़े बहुत तेरे इंद्रिय को सुख दे सकता है, लेकिन असली स्व अर्थ, स्व कौन है, हमारे शरीर स्व नहीं, ये तो जाने वाला है, ये तो किराया भाड़ा में लीजिए, किराया मकान में रहता ना, शरीर भी किराया मकान है, और क्या, उसको मेंटेन करके रुके हैं, अब जाएगा, जाएगा कि नहीं, ये तो 100% सिर्फ सबको पता है, जाना पड़ेगा। ऐसे नोटिस आएगा, बोले भाई दूसरा किराया ढूंढ लो, जाओ हटो, तेरे लिए व्यवस्था पहले से हो चुका है, निकाल देंगे। तो ये किराए मकान है शरीर, तो इस शरीर के लिए जो हम पूर्ति करने के लिए, सुख पाने के लिए व्यवस्था करते हैं, उसको हम स्वार्थ मानते हैं, लेकिन असली में स्व और शरीर नहीं है। स्व कौन है? शरीरी, ना कि शरीर। शरीर तो है क्यारी बैग, हमको, हम लोग असली, हम मैं जिस कवर में क्यारी हो रहा हूं वो है शरीर, लेकिन मैं क्या हूं अब हमको पता नहीं, लेकिन समझते हैं सब, ये मेरी हाथ, मेरी पैर, मेरी सर, मेरी पेट का, मैं पैर, मैं सर, कोई कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तो मैं कौन है, किसका है सब है शरीर, किसका हाथ पैर पेट सब किसका है, वो जो मैं पदवाच्य है वो जीवात्मा है, वो है स्व, असली हम वही है, उन्हीं के लिए जो फायदा की चीज है उसको स्व अर्थवा स्वार्थ कहते हैं, लेकिन इस बात को समझते नहीं। इसी को प्रहलाद मानते हैं, नते विदु स्वार्थ गतिं ही विष्णु, विष्णु ही स्वार्थ है हमारे, असली स्व के अर्थ है वही, हमारे असली काम की चीज है, इसको हम जानते नहीं, और बहिरर्थ मानिना, ए दुराशया, सब नष्ट बुद्धि वाले, मति भ्रष्ट वाले, बाहरी चीज को अर्थ पकड़ो, इसी को पकड़ में बटोर में लगे हैं, वो तो रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, ना तू रहेगा ना वो रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो यही स्वार्थ है, और वो लोग सांसारिक लोग स्वार्थ तो अपने को शारीरिक चीज को मानते, फिर परमार्थ को मानते हैं, स्वर्ग सुख को उसको परमार्थ मानते, लेकिन सही भाषा में जो स्वार्थ है वही परमार्थ है, वही चरमार्थ है, चरम अर्थ, परम अर्थ, स्व अर्थ एक ही है अर्थ, बाकी कोई सब अनर्थ है, उसके अलावा सब अनर्थ है, सब अनर्थ, अर्थ तो एक ही है, इस अर्थ को जानते रहे। ये अर्थ के बारे में जो जानते हैं उनका आचरण कैसा है वो पूर्ण पुरुष है। जो जो व्यक्ति इस अर्थ को जान करके उठकू बटोरने में उसको जानते हैं, यूज करें कि असली अर्थ तो वही है, उसके लिए जो प्रयासरत हैं उनको क्या कहा जाएगा, ये पूर्ण कंप्लीट पुरुष वही है, उनका जो व्यवहार फिर कुछ दूसरा होगा, बाकी संसारी बारे सब कंप्लीट है नहीं, पता क्या, आपको पता ही नहीं, परमार्थ को पता ही नहीं, स्व अर्थ को पता ही नहीं, तो इसके लिए आचरण व्यवहार सब गड़बड़ी है। लेकिन जो जान चुके हैं, परमार्थ को जान चुके हैं, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास, उनके व्यवहार, उनके आचरण, वो तो पूर्ण पुरुष के आचरण है, पूर्ण पुरुष। इसीलिए संन्यास आश्रम के बाद में, सम्यक न्यास करने के बाद में जो आचरण उनको मानते हैं कि ये पूर्ण पुरुषों का आचरण है। तो प्रहलाद महाराज ने, आप जानते हैं हरि के कितने प्यारे भक्त हैं, हरि जिसको गोद में लेकर चुमे थे, उनके मथा सूंघे थे, गोद में उठाए थे, जिनके लिए बचपन से भी, कितने प्यारे भक्त है प्रहलाद बेटा। उन्होंने बड़े जब राजा बने, राजा बनकर के एक समय उनको भी लगा, यार हम तो यहीं रहे, कि टूर फूर में गए नहीं, कि चलना चाहिए ना टूर फूर में, इसके समय समर सीजन से ज़्यादा ज़्यादा रहते हैं, समर कैंप करते हैं, बोले हम भी कैंप कर दें। तो आपने पार्टी लोग, अमात्य मंत्री पार्षद को लेकर के चले होंगे, लेकिन ये नहीं कि वो ऑटो में या ट्रेन बुकिंग करके इसे निकले, ट्रेन फेन तो होता नहीं थे, तभी ट्रेन प्लेन बस बुकिंग करके नहीं गए होंगे, लेकिन कहाँ गए थे मालूम है, टूर ऑफ द ब्रह्मा यूनिवर्स, ब्रह्मांड भ्रमण में निकले थे, लिखा गया शब्द। हम लोग तो यहीं से बड़े दूर से जाएंगे, बहुत भारी ऋषिकेश, 400 किलोमीटर तक जाकर आया, नहीं तो 40 किलोमीटर तक हमारा है अंदाज, यहीं से आ जाएंगे टूर करके घूम कर, ब्रह्मांड कौन जाने, स्टेट ही गाँव ही नहीं जानते हैं आगे। लेकिन प्रहलाद महाराज निकले थे, उनका पास कौन सा गाड़ी लेकर निकले होंगे पता नहीं, इतने सारे लोगों को लेकर निकले थे, और सुखदेव गोस्वामी कहते क्या टूर में निकले थे, यूनिवर्सल टूर, ये नहीं कहते हैं कि थोड़ा इंडिया टूर में निकला, कि यूपी टूर में निकला, कि वृंदावन टूर में निकला, कौन सा टूर में निकले थे, नॉट वर्ल्ड टूर, नो 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 नो, वर्ल्ड टूर तो छोटा था उनके लिए, यूनिवर्स टूर में निकले थे। अब कौन सा गाड़ी लेकर गए होंगे ये मेंशन नहीं किया इधर, अब अकेले तो थे नहीं, पूरा पार्टी लेकर गए थे, लेकिन यूनिवर्सल टूर में निकले थे, मैं पता नहीं क्या बुकिंग कर गए होंगे, कैसे गए होंगे, मेंशन नहीं किया हो अपने हिसाब से कुछ किए, हमको समझ नहीं सकते। आजकल वैज्ञानिक लोग फेल मार रहे, बोले कि कैसे गया होगे, हम लोग तो बड़ी जोर से जो बहुत बड़े लोग हैं फ्लाइट बुकिंग करते हैं, नहीं तो अपना खुद के फ्लाइट होता, यही तो है ना, उससे बड़े तो कुछ सोच भी नहीं सकते। अरे ये इसमें वर्ल्ड टूर भी नहीं कर पाए, यूनिवर्सल टूर क्या करें, लेकिन ये यूनिवर्सल टूर पर निकले। अब उनके क्षमता, उनके सामर्थ्य थोड़ा सोच लो, हाउ पावरफुल, हाउ कैपेबल ही वुड बी, सोच के देख सकते हैं प्रहलाद महाराज उनके पार्टी के लोग, और वर्ल्ड यूनिवर्सल टूर में निकले, पहले इस भारतवर्ष से भ्रमण में करते हुए फिर आगे जाएंगे, उनका कोई टाइम के थोड़ी पड़ा है। तो भारतवर्ष में टूर में जब निकले थे, ब्रह्मांड टूर में निकलते, ये घूमते घूमते सह्य पर्वतमाला, सह्य जैसे आपके थोड़े जाए अरावली पर्वतमाला है हरियाणा बॉर्डर में, तो यहाँ सह्याद्री सह्य पर्वतमाला, हिमाद्री हिमालय पर्वतमाला, विंध्याद्री विंध्य पर्वतमाला, ऐसे भारतवर्ष में कई पर्वतमाला है। आद्री मतलब अचल, जो पर्वत है, सह्य आद्री मतलब सह्य रूपी अचल मतलब पहाड़, पहाड़ माला, कई पहाड़, सैकड़ों पहाड़ जो सह्य माउंटेन के रेंज में आते हैं, सह्य माउंटेन रेंज, ये महाराष्ट्र से लेकर के दक्षिण भारत तक फैला हुआ है सह्याद्री। तो सह्याद्री के तलहटी पर कावेरी नदी के किनारे वो घूम रहे थे, तभी आजकल ये सिटी फिटी सब नहीं होगा, तब घूम रहे थे, तभी तो श्रीरंगम मंदिर भी शायद नहीं हुआ होगा, वो तो श्रीरंगम मंदिर भगवान कोई ब्रह्मलोक कोई कहीं होंगे, ये तो प्रहलाद महाराज कोई कल्प के सत्ययुग का बात है। तो जब टूर कर रहे थे, कावेरी नदी भी था, इसका मतलब तभी बहुत प्राचीन है कावेरी नदी, बहुत प्राचीन है, जब तक गंगा जी नहीं थी उसके पहले कावेरी थी। हाँ, गंगा जी तो वामन देव आए उसके पहले, हाँ ये तो बलि अभी होगा, हो तब तो गंगा आएगा, वामन आएंगे, उसके पहले प्रहलाद कावेरी तट पर गए थे, कावेरी उससे पुराने नदी है। तो कावेरी तट पर सह्य पर्वतमाला के घाटी पर एक व्यक्ति को मिले, वो व्यक्ति लेटा हुआ था, लेटा हुआ तो बैठा भी नहीं था, लेटा हुआ था, और सारे शरीर में धूल ढांका हुआ था, धूल धूसरित था, कपड़ा तो एक इंच भी नहीं पहना था, बिल्कुल नंगम नंगे था, और बिल्कुल मस्ती से अब आगे आगे बढ़, बिल्कुल हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा था, ऐसा नहीं कि स्किनी बॉडी ना, बिल्कुल हट्टा कट्टा शरीर था, और बिल्कुल नंगे और धूल ढांक करके सोया था मस्ती से। उसको कहते हैं अजगर वृत्ति का साधु था। अजगर देखे होंगे आपने चिड़ियाखाना में, तो देखे होंगे जो जो गए होंगे जू में, वहां अजगर देखे होंगे, बाकी बाजार घाट में तो नहीं देखे होंगे अजगर, टीवी में तो देखे होंगे, नेट फेट में, हाँ नेट में देखते हैं, आजकल तो गाय बछड़ा भी सब नेट में देखकर बताते हैं, और क्या करें। तो अजगर सर्प वो दूसरे सांप के तरह बहुत बड़ा मोटा तगड़ा होता है, वो चलता फिरता नहीं है, वो जहां बैठ गया बैठ गया, क्या एक है ना पंखी करे ना चाकरी, अजगर कर क्या बोलते हैं, अजगर करे ना चाकरी और पंखी क्या करे, पंखी करे ना काम ना तारा, वो जैसे वो बोलते वो नहीं करते हैं बिजनेस वजनेस, बैंक बैलेंस उनके सब कुछ नहीं होता, वो सब नहीं करते, अजगर करे ना चाकरी, वो चाकरी फैकरी नहीं करता, वो बस पड़े रहता है राम भरोसे, दाता राम भरोसे, कहीं जाएगा नहीं, यहीं पड़े रहेगा, लेकिन पेट भरता है उसका भी, बस राम के भरोसे, मतलब राम की चिंता करता ही होगा ना कि वो मुझे देंगे, 12 बजे लंच अभी नहीं मिल रहा है, राम 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 लंच अभी नहीं मिला, राम भरोसे है, राम देते हैं दाता राम। तो राम भरोसे कहीं नहीं जाता, आज अगर वहीं पड़ा रहता और कहीं उनका रेंज है बहुत पावरफुल सर, रेंज में आधा एक किलोमीटर तक वो देखता रहता है, कहीं पशु पक्षी आ गए या बैठे बैठे खींच लेगा, वो इनहेल करेगा जो क्या बोलते हैं हम, श्वास खींचेगा प्रश्वास, तो आपको उड़ा कर ले जाएगा, पशु पक्षी या हवा में उड़ करके उनके मुंह में चले जाएंगे, उनका इनहेल इतने पावर है, सांस लेगा खींच लेगा आपको भी, हो जाकर पकड़ कर नहीं लगा, सांस से ही हवा से खींच लेगा आपको, उड़ा कर ले जाएगा, अगर रेंज में आ गए उसका तो, देख लिया सांस लेगा खींच लेगा आपको, लो आपके गाड़ी की सही दिखने चलेगा, गाड़ी एक्सीलेटर काम करो चलेगा नहीं। तो इतने पावरफुल सर्प होता है, वो सोता है और वो चुबाता नहीं अजगर, जैसे आप टैबलेट खाते हैं ना, चुबाता थोड़ी डाले पी निकल ले, तो वही सही डालता है सीधा, वो पेट में ही अपना डाइजेस्ट वैसे होता है उनका है तोड़ मरण का, वो दांत फांत ये सब काहे करे, सीधा अंदर ले लेता है। तो इस प्रकार अजगर वृत्ति के संत होते हैं, पड़े रहते हैं एक जगह में, राम भरोसे, राम के चिंतन करते हैं, पड़े रहते हैं और राम की कृपा से जो मिल जाए, कुछ मिलता है उनको भी मिलता है, वो कहाँ जंगल में नदी तट पर पहाड़ के नीचे पड़ा था उसको कुछ मिलता होगा, हटकट है वहाँ भी कुछ, भगवान सभी के व्यवस्था सब जगह में किए हैं, इसलिए तो दाता राम है, उनको भी यहाँ सप्लाई देते हैं। ओ मस्ती में पड़ा है, धूल धूसर पड़ा है, कोई कपड़ा लता नहीं, एसी कूलर नथिंग कुछ नहीं बैठा, तो उनको देखे वर्णन आता है कि यहाँ के लोकल लोग भी चले थे, अरे यूनिवर्सल फिगर प्रहलाद महाराज से कितने बड़े नेता है, ये कोई MLA MP तो नहीं है, वो तो कोई वर्ल्ड के राजा एक छत्र सम्राट थे, पूरे पृथ्वी के विश्वपति थे, वो कहीं देश में आए होंगे तो आसपास लोकाली लोग दौड़कर आए होंगे कि नहीं देखने के लिए, आए होंगे सब उनके पास बहुत जुटे होंगे, तो जब देखे उन व्यक्ति को, यहाँ के जो लोकल लोग थे, इस एरिया के लोकल लोग थे, वो भी उनको पहचान नहीं पाए, ये बाबा जी है कौन, ऐसे पढ़ा है, वो भी नहीं पहचान पाए। इस श्लोक में यही वर्णन आया कि किस प्रकार उनको नहीं पहचान पाए, इस श्लोक में कहा गया वहाँ के लोग उनके कर्म से, उनका कर्म भी नहीं पहचान, कोई कोई जैसे हम कर्म से पहचानते हैं, जो सुबह उठ करके अरे पलवल वाले दिल्ली जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली और जो ट्रेन होता ना हमारे, नहीं नहीं जो डेली वर्कर होते ना लोकल ट्रेन में डेली वर्कर, देखने समझ जाए भाई यहीं के है, वहीं भीड़ उठेगा, वही सीट भी उनका ही है, टांग कर जाएंगे, है ना, लोकल वाले हैं, कर्म से समझ जाएंगे भाई कहाँ का है, किस कर्म है ना, नहीं लोकल पैसेंजर, तो कर्म से भी लोगों को समझा जाता है। और कृति कर्मणा कृतिर, कृति मतलब उनके शारीरिक लक्षण, उससे वेशभूषा उसे पता चल जाएगा भाई कहाँ के किस प्रकार है, वाचा उनकी भाषा से भी समझ में आएगा, और उसमें भी समझ नहीं, कर्म से समझ में नहीं आया, शारीरिक देखकर हट्टे कट्टे समझ में नहीं आया, वाणी से भी समझ में नहीं आया, क्यों बोलते भी तो नहीं बोलेंगे क्या समझ में नहीं आया, बोलते हैं कुछ शारीरिक चिन्ह, क्यों जेनी उडाला होगा, तिलक किया होगा कंठी, उनसे पहचान, अरे ये वैष्णव लगता है, यही से तिलक यही से कंठी, शारीरिक लक्षण कुछ होता है, इससे भी वो भी कुछ नहीं, वर्णाश्रम वर्ण और आश्रम जयंती चिन्ह के ब्रह्मचारियों कुछ होता है, यूनिफॉर्म होता है, सन्यासियों का होता है दंडक मंडल धारणा और गृहस्थ का होता है, इसी के वर्ण आश्रम जनित कोई चिन्ह से भी उनको पहचान नहीं पाए, ना उनके वाणी से, ना उनके शारीरिक चिन्ह से, ना उनका काम से, किसी प्रकार से उनको पहचान ही नहीं पाए। सो सा व्यक्ति न व्यक्ति स, वही वही आदमी थे, वही महात्मा था क्या जो 2-3 महीने मिले थे, अरे यार पकड़ में नहीं आता, पहचान ही नहीं पा रहे थे जिसको, लोकल लोग भी जिनको पहचान नहीं पाए, प्रहलाद महाराज तो कैसे पहचानेंगे, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं प्रहलाद महाराज जा करके पता नहीं कि भाई आपको आईडी प्रूफ दिखाओ, हुआ रही हो बाद में से ट्रीटमेंट नहीं, बिना पूछे उनका पिछले क्या क्या हिस्ट्री बिना पता किए सीधा दंडवत प्रणाम किए, उसको दंडवत प्रणाम किए, यही लिखा गया, उनके वर्णाश्रम धर्म के लक्षण नहीं समझ पाए कि यही पुरुष जानते थे, तो उसको देख करके प्रहलाद महाराज ने उनको सम्मान किए, उनको प्रणाम करेंगे, क्यों, क्योंकि जो कंप्लीट फेज पर है ना, जो व्यक्ति बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग जिसे कंप्लीट आ चुका है, उसके लक्षण कुछ ऐसे होता है कि दूसरे कमन लोग तो पकड़ ही नहीं पाएंगे, प्रभुपाद जी ने कहा वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझे, बड़े बड़े समझदार व्यक्ति नहीं बुझ पाएंगे, वो दूसरा क्या जाने, लेकिन जो स्टेज में है वही समझ पाएगा, वो समझ पाएगा, दूसरा नहीं समझ पाएंगे, पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो समय कम है, मतलब मैं जो चीज को बताना चाह रहा था, ये सब चीज हमको क्यों वर्णन कराया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं हरेक चीज में हरेक स्थान में दो चीज महत्वपूर्ण है, एंट्रेंस और एग्जिट, प्रवेश और प्रस्थान, है ना नहीं, ये दो शब्द के साथ परिचित है कि नहीं? एयरपोर्ट में हो, मंदिर में हो, घर में हो, टॉयलेट में हो, कहीं भी जाओ भाई, एंट्री एंड एग्जिट, जहाँ घुसे यहाँ से निकलना तो पड़ेगा ही, वही थोड़ी रहूँगा ट्रेन में प्लेन में, ये नहीं हो यार, घर में है कि नहीं? यहाँ तो कोई आश्रम में, पाठशाला में, कोई उम्र में, कहीं भी घुसो भाई, जब घुसना तो निकलना ही पड़ेगा, जो एंट्री है तो, जब प्रवेश है तो प्रस्थान है। हाँ, ये गेट दोनों तो हाईलाइट में लिया होगा, ग्रीन लाइट रेड लाइट में लिखा होगा, एग्जिट पॉइंट एंड एंट्री पॉइंट। तो इस प्रकार ये शरीर में, इसी संसार में हम लोग सब एंट्री तो मार चुके हैं अब एक दिन, है ना नहीं, लेकिन एग्जिट पॉइंट के बारे में कोई सोचे ही नहीं है, यही से बेवकूफ है। अभी चक्कर लगा रहे हैं संसार संसार चक्र में, लेकिन उसका एग्जिट पॉइंट भी है। आध्यात्म में जो रचनाएं सब है, जो आध्यात्म दृष्टि से जिनको आचार्य माना जाता है शास्त्र की दृष्टि से, उनको आचार्य डिग्री तभी दिया जाता है जो उन्होंने तीन एग्जिट पॉइंट को जान चुके हैं, प्रस्थान त्रय। प्रस्थान त्रय के ऊपर जो भाष्य लिखते हैं उनको आचार्य माना जाएगा, नहीं तो बाकी किसी को आचार्य मानते ही नहीं। विद्वान लोग शास्त्र शास्त्र अनुसार बोलते, नो दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड आचार्य, ना कैसे आचार्य मानेंगे, क्योंकि प्रस्थान त्रय के ऊपर लिखा नहीं, प्रस्थान त्रय जाना नहीं क्या है, प्रस्थान होता क्या है, एग्जिट, निकलने के बारे में जिसका ज्ञान है वही आचार्य है, वही समझदार आदमी। घुसता तो घुसा ही दिया जाता है, उस जाते कर्म के अनुसार आया भी बस होकर के वो जाएगा, लेकिन जाने का रास्ता जिसको पता है, प्रस्थान त्रय। शास्त्र में तीन प्रकार के प्रस्थान गेट बताया गया, लेकिन और जगह में प्रस्थान चतुष्टय भी कहा गया, चौथा है, एक गीता, उपनिषद और वेदांत, वो तीन को प्रस्थान त्रय। इन तीन के ऊपर जो समझा नहीं पढ़ा नहीं, इसको आचार्य नहीं मानते थे। अभी आगे वक्त लोग जोड़े भाई भागवती, ये भी प्रस्थान है, प्रस्थान चतुष्ट है, ऐसे मानते हैं। जब तीन हो चार हो, इस कैसे निकलना है उसके बारे में जिसका ज्ञान हो वो होगा पंडित, होगा आचार्य। तो ये पूर्ण पुरुष तो वही है जो निकलना जानता है, निकलना नहीं आता, स्वतः जैसा चला दिया मरेगा, पता नहीं इसे कंट्रोल कैसे करें ना, निकलना वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ट ऑफ डाइंग लिविंग, ये LIVING नहीं, LEAVING, ये आर्ट ऑफ लिविंग। तो ये प्रस्थान बताते हैं, प्रस्थान करने का कला अलग अलग उपनिषद में, शास्त्र में, अलग अलग संप्रदाय परंपरा में अलग अलग प्रकार दिया गया, क्योंकि प्रस्थान तो करना ही है, यू हैव टू गेट अवे, एग्जिट तो करना ही करना है, लेकिन कैसे एग्जिट करें। भगवान ने तो भगवद गीता के उपदेश में एक अध्याय ले दे करके उसी के ऊपर चर्चा की, आठवां अध्याय, अक्षर ब्रह्म परम योग, यही ब्रह्म अक्षर धाम अक्षर हो। अब भगवान पूरे ले दे करके उसका ऊपर, आपको कोई श्लोक याद होगा, बोलते हैं प्रयाण काले मनसाचले न प्राणम आवेश्य सम्यक भ्रुवोर मध्य प्राणम अमिश्य ओम अक्षर ब्रह्म चिंतते प्राप्नुवंती परमाम गतिम, है ना नहीं, ऐसे करे ऐसे करे ध्यान करो, ओम इति अक्षर, एक अक्षर ब्रह्म को ध्यान करो, ऐसे करो, कितने ध्यान धारणा क्या क्या सब बताए, ऐसे जो करेंगे ते जानती परमाम गतिम, भगवान बोले उनको परम गति। अर्जुन सुन करते फ्लाट, बाप रे बाप, मैं तो अभी कोई प्राणायाम किया नहीं, आसन प्रैक्टिस किया नहीं, ऐसे करूँ ऐसे करूँ ऐसे बिल्कुल भ्रुकुटी में ऐसे करके सारे सर्व इंद्रिय संयम्य सारे करके मनोहृदय निरुद्ध च सब को निरोध करके ये करके एक पॉइंट वन पॉइंटेड करके यहाँ ला करके तभी जा करके ओम इति अक्षर जप करते जो प्रस्थान करे सहज आती परमाम गति। अर्जुन बोला खत्म काम, हम तो लड़ाई झगड़ा में व्यस्त रहे, वो क्या करेंगे फिर, सार आपने ये बताया मैं तो कुछ पता ही नहीं, हाउ टू डू इट। तब भगवान अर्जुन को मुंह देखे बोले, सुनकर घबरा रहे, बोले अर्जुन अनन्य चित्ता सततं जो मांग स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ। पार्थ डरो मत, ये तो उन्हीं लोगों के लिए कहा जो इसके पीछे लगे हुए हैं, प्रस्थान त्रय पढ़ते हैं करते हैं, लेकिन तेरे जैसा जो हर समय मेरा ही चिंतन करता है, मेरे लिए जीता, मेरे लिए सोता, मेरे लिए खाता, मरेगा भी मेरे लिए मरेगा, मतलब हर कुछ मेरे लिए जो करता है, तस्या अहम सुलभं पार्थ, उनके लिए तो मैं सुलभ हूं। सुलभ मतलब आजकल 5 रुपया जमा भी करता है सुलभ में, वो भी नहीं देना पड़ेगा। समझते ना, सुलभ आजकल मार्केट में अवेलेबल है, सुलभ है, लेकिन जमा करना पड़ता पैसा है ना, चेंज पैसा नहीं आपको पिसा भी नहीं करने देंगे, सुलभ में दुर्लभ हो जाएगा। सुलभ करने के लिए आपको चेंज पैसा रखना पड़ेगा, तब सुलभ होगा, नहीं तो दुर्लभ। लेकिन भगवान ऐसे नहीं कहे कि आपको देना पड़ेगा चेंज, नहीं। तस्या हम सुलभ पार्थ, पार्थ में उनके लिए तो बराबर सुलभ हूं, कुछ नहीं करना पड़ेगा उनके लिए, मैं हूं। जो मेरे लिए हैं उनके लिए मैं हूं, और जो इसी चक्कर में पड़े उनके लिए करेंगे तो मिलेगा उनको इसी हिसाब से, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन तेरे जैसे जो मेरे चिंतन में लगे हुए हैं मेरे, तो उनके लिए क्या है। तो ये प्रस्थान करने का कला, इसी के ऊपर सारे आचरण आचार्य ले दे करके ही शिक्षा देते हैं, हाउ टू डू प्रस्थान, एग्जिट कैसे किया जाए। ये जितने सभी अजगर वृत्ति, अवधूत वृत्ति, जो परमहंस वृत्ति, ये सारे प्रकार के वृत्ति, अघोरी, क्या क्या घोरी, क्या क्या सब संस्थाएं किस किस प्रकार करते हैं, निर्माण करना, निरोध करना, ये करना, कई प्रकार से कैसे निकलने के लिए, तब फिर आपका कामना वासना खत्म हो जाएगा, ये हो जाए, इस निवृत्ति करने के लिए कई प्रकार के जाने के तरीका से बताया गया। लेकिन वैष्णव संप्रदाय में, क्योंकि भगवान तो वैष्णव है, उनके पार्टी के लोग हैं, वो बता दिए तो काहे को चक्कर में पड़ता है, मेरे लिए सुलभ हो तेरे लिए, तो कैसे, बोले कुछ चिंता की बात। भक्ति विनोद ठाकुर अंतिम समय में वो बहुत बड़े कमा रहे थे, तभी डीएम थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो उन्होंने लास्ट में बिल्डिंग बनाए गोद्रुम में, स्वानंद सुखद कुंज, ये जो घर बनाया उस घर नहीं दिया, ये 2 BHK 3 BHK ऐसे नहीं बनाया उन्होंने, उन्हें क्या बनाए, कुंज बनाए जिसमें स्व का आनंद हो। स्व आनंद, स्व मतलब शरीर नहीं है, वो जानते थे आत्मानंद के प्रैक्टिस जहाँ होगा स्वानंद, और वही सुख है सुखद कुंज। यहाँ रह करके भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम, गोद्रुम कानन कुंज के विधु चंद्रमा, श्री गौर चंद्र के चरण चिंतन, उनके भजन करना, यही है जीवन की परम सिद्धि, परम प्राप्ति, परम धर्म, चरम धर्म है। तो जानते थे, तो इसी के लिए भजन करते थे बैठ करके। जितने माधवेंद्रपुरी, वो तो रोते रोते शरीर छोड़े, उनका डिसाइपल बोला, बोला गुरुजी आप इतने बड़े समझदार ब्रह्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी पुरुष, आप रोते, दूसरे लोग कहेंगे क्या, अरे आपके गुरुजी महापुरुष ऐसे रो रो कर गए, ठीक नहीं, आप तो बिल्कुल शांत चित्त रहना चाहिए। बोले गेट आउट, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, भाग जाए यहां से। ये नहीं समझ पाएंगे, अपना विचार से दृष्टि नहीं समझ पाएंगे ये, अरे सब जानते हुए रोते क्यों है, रोना ही ये प्रस्थान के समय, रो रो करके जाना, वो जानते भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके प्रशंसा किए, यही जानते थे। एक से एक हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी ने लास्ट मोमेंट तक वृंदावन में आए, सो सो करके लेटे लेटे, शरीर में तो कुछ ड्रॉप पानी भी सांस नहीं, फिर भी ट्रांसलेशन करते थे, डिक्टेशन दे रहे थे, करो मतलब भागवत चिंतन, भगवान चिंतन के साथ प्रयाण भी करे तो उन्हीं के लिए करे, उन्हीं का होकर के करे, जिए तो उनके, उनके होकर जिए, खाएं तो रहें तो मरे तो सब उनका होकर के करे। फिर कहे को भाई है ना, नहीं यही प्रस्थान, आदर्श प्रस्थान, जो इस प्रकार करेगा उनके अजगर वृत्ति काहे करे भाई, हमको अजगर फजगर नहीं बनना है, हम गजगर बने, खूब चकाचक खाएंगे, महाप्रसाद खाएंगे, है ना, नहीं दूसरा वहां का चाट चकोरी नहीं खाएंगे, महाप्रसाद खाएं, खूब भगवान के साथ जम करके कीर्तन भजन रस में रहो, तो भगवान के जमे जमकर तो ऐसे ही जाओ, भगवान के साथ जाओ, ये तरीका है। लेकिन जो ऐसे नहीं कर पाते हैं, इसी प्रकार जिसका विचार नहीं है, वो फिर ये उल्टी पुल्टी अजगर ओवर ओवर सब करते रहेंगे, अवधूत अवधूत बनेंगे, लेकिन हमारे लिए सब नहीं, हमारे लिए तो सीधा हर प्रकार से भगवान के ध्यान में। भगवान तो यहां तक कह ले, तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्ध च, लड़ाई भी करते रहो, मेरे चिंतन करते रहो, कुछ भी करते रहो, तो मैं टेक केयर करूंगा, है ना, नहीं। मुकुंदमाला सूत्र में वो बोले कि प्रभु मैं अभी मर जाऊं ना, क्या ना पता नहीं आगे चल करके मेरे कंठा बरिद्ध निबुद्ध स्मरणम कुदस्ते, कैसे स्मरण कर पाऊं, कफ वित्त सब चौक हो जाएगा गला फला, तो अभी बिल्कुल सुस्त सबल हूं, अभी मेरे प्राण निकल जाए। लेकिन भगवान बोलते हैं, अरे क्यों चिंता करते, प्राण निकलेगा क्या? विष्णु पितामह थे, वो तो जिस चाहे तब निकल जाता था, लेकिन कितने कष्ट सहे उन्होंने। क्यों कि काहे को उनके चिंतन करूं, निकल कर करूं क्या, ये शरीर से निकल जाएगा फिर क्या करूंगा। बोलते आत्मा ही तो है, अभी हूं, अभी चिंतन करना चाहिए, हमको जाना क्या, वो नेचुरली जो होगा होगा, नेचुरली जब शरीर से प्राण निकलेगा निकलेगा, नेचुरली जब आए नेचुरली जाएंगे। ले मुझे काल किससे बता रहा था, आजकल ऐसे लोग हो गए समझदार, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोलते ना कि भाई इसी समय में इसी स्थान में इसी काल में इस प्रकार जन्म हुआ, रे इतनी बड़ी भारी कोष्ठी। लेकिन ये तो मैनिपुलेट करके डॉक्टर को बोलते रोक दो, इसी समय में डिलीवरी होगा, बताओ तो एस्ट्रोलॉजी फेल, मैनिपुलेशन कर देते हैं उसी समय, मरने वाले भी इसे करते हूँ, इसी समय गोली मारूंगा तो मार दूंगा, तो इसी लक्षण इसी स्थान काल पत्र में मरूंगा तो सदगति होगा, नहीं इनको नहीं जानते, इसमें बताया गया हर एक क्रिया, जैसे लोग समझदार समझ पाएंगे। ये मैं इसे स्विच लगाया, स्विच ऑन करने से लाइट जलता है, लेकिन अगर ये स्विच के अंदर एक तार थोड़ा ढीला पड़ गया हो नहीं जलेगा, फिर इलेक्ट्रिशियन बोला नहीं जल रहा यार, नहीं जल रहा है, वहाँ बोले पावर तो यहाँ है, यहाँ तो है, यहाँ तो कहीं तक वो क्या लगाते होंगे लाइट जलता है, जिसको क्या बोल टेस्टर टेस्ट करता है, यहाँ तक करंट आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहीं से नहीं आ रहे, इसका बीच में क्या गड़बड़ है, कहीं कहीं लूज हुआ, कहीं नहीं चलता सब होते हुए। तो इसी प्रकार हम नहीं समझते केवल हो जाने से काम बन जाएगा, नहीं नहीं नहीं, केवल काल से काम नहीं बनता, स्थान से भी काम नहीं बनता, कंप्लीट रिजल्ट पाने के लिए लाइट जलाने के लिए स्थान भी होना चाहिए, काल भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए, अल्टीमेटली चेतना भी होना चाहिए, वो सबसे पढ़े। हाँ वो तो पंचेतानी कारण बोले चार भी नहीं, भगवान दैव वो भी साथ देना चाहिए, तब जाकर काम बनेगा, है ना। नहीं क्या है पांच काम, पंचे कारण नानी अधिष्ठानं तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, है ना। नहीं विविधान से पृथक चेष्टा, वो भी सब करो, नहीं दैव एव अत्र पंचमम, ओह फिफ्थ पेज में बैठे बोले बाकी सारे कर लो, होगा ही नहीं, सब्जी बॉयल होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, मेरा इनपुट नहीं हुआ तो हो ही नहीं सकता। तो आप जबरदस्ती घुस गए, जैसे हम बोलो कि भाई उनका फेस्टिवल चल रहा है, जो आ रहे हैं लगा लब साफ बढ़िया सा मालपुआ खिचड़ी खिला रहे हैं और दे रहे हैं, गिफ्ट चल रहा है, चलो घुस जाओ आपको मिल जाएगा, अन इन्वाइटेड के घुस गए तो आप मिलेगा आपको, देखेंगे तो है नहीं, हम घुसेंगे चोर तरह को पकड़ कर पीटपाट कर सकेंगे, पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं, वही काल में घुसा वही स्थान में घुसा, लेकिन ट्रीटमेंट हमको होगा नहीं, क्योंकि आप नेचुरली नहीं गए थे, ऐसे घुस गए, ऐसे निकलने पर भी कोई जेल में आपको 20 साल के लिए ठोका गया, आप चालाकी करके निकल गए कोई टाइम देख करके, तो वारंट निकाल करके फिर ठूंस देंगे। तो ऐसे घुस जाने से निकल जाने से स्थान और काल से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम वृंदावन में वही महेंद्र बला में गोली मार के मार देंगे तुझे, हो जाएगा तेरा काम, इसी बेड़ा में मरा, अरे कुछ नहीं होने वाला है, कि इसी समय जन्म हो वही कुछ काम नहीं करेगा, ये सब फेल है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बेचारा स्थान और काल को देखते हैं, चेतना को तो देख नहीं पाएंगे, वो बेचारा क्या दैव को तो और भी देख नहीं पाएंगे। तो ये लाइट नहीं जलता केवल स्विच ऑन करने से, है ना। नहीं वो चेक करके देखना पड़ेगा कहाँ कौन से पुर्जा ढीला पड़ गया, तभी नहीं जलेगा, सब ठीक ठाक होते। तो इसलिए इस प्रकार से कुछ काम नहीं होता नेचुरली। नारद मुनि को बचपन से ही उन्होंने सिद्धि हो गया था भजन करके, बड़े बड़े वेदांती लोग से कृपा प्राप्त किए, घर छोड़ के चले गए, भगवान स्वप्न में आए उनको दर्शन दिए, नारद जी बचन हो चले गए, बोले नहीं और नहीं, दैट्स इट, इस बार हो गया, फिर क्या करूं न, बस घूमते रहो हरे कृष्ण जप घूमते रहो, पेट पटना रोटी कपड़ा मकान, बोले मैं हूं ना चलाने वाला, मैं हूं तेरा क्यों जिंदा, मैं करूंगा सब सप्लाई मिलेगा, जाओ कब तक ना, जब तक नेचुरली आपके प्राण शरीर से छोड़ के नहीं जाता तब तक ये काम करते रहो, तब तक करते रहो, ओ फिर होगा, आप जबरदस्ती कुछ करोगे काम नहीं बनेगा, फिर आना पड़ेगा। हाँ तो इसलिए हम मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, नेचुरल वे में आए नेचुरल वे में जाए और यही काम करते रहे तो भगवान भी ले दे करके ठीक कर देंगे। भगवान कहते हैं कि जो मरते समय में किसी कारणवश उनका शरीर ऐसी स्थिति में आ गया, मुझे चिंतन ध्यान नहीं कर पाए, बोलते मैं छोड़ूंगा, मेरे लिए जो किए थे मैं जा करके जबरदस्ती उनके पास बैठ जाऊंगा, भाई मेरा आदमी है छोड़ो उनको, फोन करूंगा मैंने जमराज को, बोले चलो मेरा आदमी। वो भले मुझे याद नहीं कर पाया, भगवान याद करेंगे। तो इसलिए जीवन भर भगवान के होकर रहना, भगवान के लिए जीना, भगवान के लिए खाना, भगवान के लिए भी मरना। हरे कृष्ण।